वर्स 37, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम बार बार इसी चीज पे ध्यान रखें, कॉन्टेम्पलेशन ऑन द ट्रूइज्म आई एम ब्रह्म, उससे सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे कि जब हम दवाई खाते हैं और उससे हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम हमेशा इस चेतना में रहें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उससे हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जैसे, वही इन्होंने फिर से वही चीज़ रिपीट की है, कि जैसे दवाई से हमारी बीमारी दूर हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह अज्ञान की जो बीमारी है वो हमारी ज्ञान से दूर हो सकती है। ओनली पॉसिबल मेडिसिन इज ज्ञान, है ना। अज्ञान की बीमारी को दूर करने की और कोई दवाई है ही नहीं। जितने भी हमारी अवधारणाएं हैं, जितने भी गलत धारणाएं हैं, जितने भी हमारे मेंटल एफ्लिक्शंस हैं, वो सब के सब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, ज्ञान की अग्नि उन्हें जला देती है। तो जैसे इन्होंने पिछले उसमें बताया था कि कैसे हमारी जो बुद्धि है, जैसे इन्होंने बोला था कि सैंडस्टोन, जो रेती होती है, रेती में हमें अपना चेहरा नहीं नजर आता, है ना, लेकिन रेती को ही बहुत पॉलिश कर दिया जाए तो वो शीशा बन जाता है और शीशा में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बुद्धि को भी, बहुत बुद्धि की घिसाई, बुद्धि इतनी साफ सुथरी हो जानी चाहिए कि जिसमें आप उस चीज़ का अनुभव कर सको कि आई एम द सुप्रीम सेल्फ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कैसे होगा? उसी बुद्धि में आपको ये जाना जाएगा। देन इट बिकम्स एन इररिफ्यूटेबल रियलिटी फॉर यू। फिर आपको ना किसी को सुनने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, आप खुद से ही, स्वयं से ही इस चीज़ को जान जाओगे। तो इस श्लोक में शंकराचार्य बार बार किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि बार बार अभ्यास करिए, अनएंडिंग कॉन्टेम्पलेशन ऑन द ट्रूइज्म आई एम ब्रह्म। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ना, स्पेशली अगर आप किसी वेदांती को जानते हैं, तो ज़्यादातर वो यही बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सही नहीं पता होता, वो इसका भी मंत्र जाप करने लगते हैं, जैसे बाकी चीज़ों का मंत्र करते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र। ये मंत्र करने से नहीं होगा, ये मंत्र करने वाली चीज़ नहीं है, है ना, ये जानने वाली चीज़ है। तो कहते हैं चाहे उसको आत्मन कहो या ब्रह्मन कहो, लेकिन बात एक की ही हो रही है ना। ये हम कर चुके हैं कि आत्मन और ब्रह्मन में क्या फ़र्क है, दोनों सेम ही है। फ्रॉम द प्लुरैलिटी ऑफ चिदाभास टू द सिंगुलैरिटी ऑफ द एवर कॉन्शियस एवर ब्लिसफुल Eternal, all pervading existence, that is the journey. Plurality of चिदाभास, मतलब ये जो हमारे इतने सारे हम चिदाभास हैं यहाँ पे, है ना, जो दिख रहे हैं, ये क्या है, प्लूरल है ना, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो जर्नी क्या है, इतने सारों से एक हो जाना, है ना, यही जर्नी है। जैसे उसमें कश्मीरी शैविज्म में बोलते हैं जीव से शिव की यात्रा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना प्लूरल से सिंगुलैरिटी, चिदाभास से ब्रह्मन, वहां पे बोला जाता है जीव से शिव की यात्रा। एंड दिस जर्नी डिमांड्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑन द हर्ड वर्ड्स ऑफ विजडम। देखिए बार बार वही बातें आती हैं कि इसमें, इस जर्नी में, इस यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है, अभ्यास की और मनन की। जो आपने सुना है उस पर अभ्यास करना है और मनन करना है, है ना। सुना तो थोड़ा सा सुन लिया, सुनने को तो एक ही वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास और मनन सबसे जरूरी वही है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इस अभ्यास को करने के लिए क्या हमें, किन टूल्स की जरूरत है, वो हम अगले वर्स में बताएंगे। कुछ सवाल है आपका? हाँ जी पूछिए।
उन्होंने इसी में लिखा है, यही 37 वर्स के लास्ट में, कि गुरु ने सारा ज्ञान दे दिया है पर शिष्य फिर भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यही बात है, यही बात मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि गुरु ने तो सारा ज्ञान दे दिया है, अभी भी आप हर वर्ष में एक चीज बताते हैं लेकिन फिर भी उसका एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। दिमाग से पूरी कोशिश की जा रही है कि समझे कि ये क्या चीज है, पर उसके लिए, हाँ, अब जो ये टूल्स उसके लिए देंगे जिससे कि वो समझ में आएगा, अब नेक्स्ट में शायद आप बताएंगे तो उससे फिर प्रैक्टिस होगी।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने आगे अगले वाले में यही बताया है कि हमारे क्या, कैसे हमें जानना है उसको। चैप्टर 11 पे आ गए हैं हम, कि ऑल द थ्योरेटिकल एक्सपोजिशन ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज ज्ञान हैज बीन डन बाय द ग्रेट टीचर शंकराचार्य, But the listener may be thinking at this point, I have heard the knowledge, but I don't have any empirical understanding. है ना, बिल्कुल जो आपने अभी बोला कि सब कुछ सुन तो लिया पर मुझे कुछ भी अनुभव तो नहीं हो रहा है ना. तो वो क्या कह रहे हैं, द कंपैशनेट मास्टर शोज द वे ऑफ रीचिंग द गोल पोस्ट. तो अगले वर्स में वो यही बता रहे हैं कि कैसे आप वहाँ पर उस चीज़ को अनुभव करें. तो अब ये हमारा वर्स 38 शुरू होता है. सीधा शुरुआत ही देखिए उन्होंने उसी से की है. सिट इन अ सिक्लूडेड प्लेस विद ग्रेट डिस्पैशन इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड मेडिटेट वन पॉइंटेडली अपॉन द सिंगुलर बाउंडलेस सेल्फ विद अनस्वर्विंग अटेंशन. ओके, तो इसको समझते हैं. एक एकांत जगह में जाना है आपको, जहाँ पे रहना है. विद ग्रेट डिस्पैशन मतलब वैराग्य के साथ, वैराग्य हो जाना चाहिए बिल्कुल. और आपकी जो सेंसेस हैं, जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं, उन पे आपका पूरा वश होना चाहिए, है ना. और फिर आप एकाग्रता से सिर्फ जो आप हो, जो सेल्फ है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए. अब शंकराचार्य जी से तो यही एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, उन्होंने तो बता दिया. अब सबसे पहले सवाल आएगा यहाँ पे, इंद्रियों को कैसे बस में करें, वैराग्य कैसे लेके आए, एकांत की जगह में कैसे जाएं. ये जो तीन स्टेप्स बताए हैं उन्होंने तो बता दिए, ये तीन टूल्स हैं, है ना. मतलब चौथा टूल तो चौथा है, ये तीन चीज़ें करके चौथे को अप्लाई करो, पर हमारे पास तो ये तीन ही नहीं है, है ना. आ गई ना बात यहीं पे. इसीलिए तो क्या होता है, अगर वेदांत में जब भी यहाँ पे दिक्कत आती है इस चीज़ के ऊपर, तो फिर क्या किया जाता है, फिर आपको दूसरे मार्ग पे भेज दिया जाता है कि आप जाइए प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, है ना, मंत्र जाप कीजिए. जब तक कि आप में ये तीनों गुण लाने बड़े ज़रूरी हैं. ये तीनों गुण आएंगे तो वो चौथी चीज़, फिर शंकराचार्य जी का जो बताया हुआ टूल है, फिर आपके लिए वो काम करेगा. क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, फोकस ओनली ऑन द सेल्फ फॉर द सेल्फ इज़ द इटर्नल ब्रह्मन. लेकिन सेल्फ पहले मिलना तो चाहिए ना. सेल्फ, और सेल्फ कैसे मिलेगा, सेल्फ आत्मज्ञान से मिलेगा. आत्मज्ञान कब होगा, जब वो पहले वाली तीन चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, तो यही है कि ठीक है, ये हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वेदांत पढ़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए साथ साथ बाकी सब चीज़ों पर भी हम फोकस करते हैं ना. क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों बात होती है कि क्रिया योग करें या कुछ और प्रैक्टिस करें ताकि ये हो जाए. फिर उन्होंने आगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हम कैसे अकेले जाएं, कहाँ एकांत में रहें. तो वो क्या कहती हैं गुरुमा, यहाँ पे कहती हैं देखो, जब तुम्हें कोई बीमारी होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो तुम्हें ICU में एडमिट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, चाहे 10 दिन रहो, महीना भर रहो, 6 महीने रहो. क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को वो जो इन्फेक्शन है, जो भी, अगर बाहर निकाल देंगे ICU से, तो तुमको नहीं होगा, तुमको ठीक होने के लिए ICU की ज़रूरत है. बिल्कुल ऐसे ही, अगर तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा है ये जानने की, तो तुम्हें सेक्लूजन की भी ज़रूरत है, एकांतवास की ज़रूरत है. अब ये तो हमारे ऊपर है कि हमको कितनी पड़ी है कि हम ये करेंगे, है ना. तो अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस लॉन्गिंग है तो क्या करना है, यू नीड टू बी इन एन ICU, दैट मीन्स सॉलिटरी प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपका मन भी आपको डिस्टर्ब ना करे. सिर्फ ऐसे ही भाग जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना. तभी जो वो सन्यासी, वो क्यों मना करते हैं कि आप चले गए हिमालयाज, ऋषिकेश, हरिद्वार, पर आपका मन वहाँ पे, हाय घर में पता नहीं खाना बना होगा कि नहीं, मेरे बच्चे का क्या हो रहा होगा, मेड आई होगी कि नहीं आई होगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, या फिर आपके सारे के सारे विचार. इसीलिए उन्होंने साथ की साथ बता दिया कि आपको वैराग्य होना चाहिए. अब जो भी हो रहा है घर में होने दो फिर, है ना. अगर आप वहाँ पे चले गए हो, मेड आई के नहीं आई, हस्बैंड को खाना मिला कि नहीं मिला, अब उसके लिए बॉदर नहीं करना है फिर, अगर सच में ये करना है तो, है ना. तो और फिर सेंसेस अंडर कंट्रोल, मतलब आपका ध्यान कभी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है यहाँ पे, कि आप योग करिए. क्योंकि जब आप योग करते हैं तो करते 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 वो स्थिति अपने आप आने लगती है. इसीलिए योग के बारे में बताया गया. फिर कहते हैं कि कोई पूछता है, अच्छा कितने दिन हम रहें सॉलिटरी प्लेस में, तो कहती है जब तक ज्ञान नहीं हो जाता. अभी इसमें क्या पूछना है कि कितने दिन रहे, है ना. हम ये पूछते हैं क्या कितने दिन ICU में रहे, अब जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक ICU में रहना है. तो ये आपको करना होगा, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप रहिए और करिए. और फिर जब वो हो जाए तो वापस आ जाइए, फिर अपने घर में मेड को भी देखिए, हस्बैंड को भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वो क्या कहते हैं, वेदांत कभी ये नहीं बोलता कि आप अपना घर छोड़ के भागिए, नहीं। ऑल दे आर सेइंग इज कि आप एक ब्रेक ले लीजिए, आप पहले इसको जान लीजिए, खुद को, स्वयं को जान लीजिए, फिर इसमें वापस आ जाइए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत होती है वो क्या होता है, हमारा जो मन, जो इच्छाओं में, जो डिल्यूजन्स में, जो विचारों में, जो हमारी मान्यताओं में भरा होता है, वही सबसे बड़ी हमारी ऑब्स्टेकल होती है इसकी तरफ जाने के लिए। फिर उन्होंने बोला है, दस शंकराचार्य एलूड्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ समाधि, इसी की, समाधि की बहुत ज़रूरत है। एंड टू दोज हु से वी डोंट नीड टू डू दिस, आई से वेल डोंट। तो कोई बोल रहा होगा कि हमें क्यों करना है ये सब, तो मत करो, कौन बोल रहा है ना, कोई किसी के ऊपर फोर्स थोड़ी किया जा रहा है कि आपको ये करना है, तो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है तो नहीं। तो अगर आप मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, इस सब के बीच में ही अगर घूमते हो तो फिर वो तो घूमते रहोगे, है ना, फिर नहीं जान पाओगे। तो फिर वो कहते हैं, जो सिर्फ सुन के रह जाते हैं उनका क्या होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, सब ठीक है, लेकिन ज़रा सी प्रॉब्लम आई, कुछ हुई तो सब, सारा का सारा ज्ञान बाहर, सब उसी के अंदर वापस, प्रॉब्लम आते ही डूब जाते हैं, प्रॉब्लम आते ही नीचे गिर जाते हैं। तो फिर इनके पास आते होंगे कि गुरु माँ, अरे हम तो बहुत दुख हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें। कहते अब कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं हुआ ना। अगर दुख परेशानी संसार में आते ही तुम वहाँ पे डूब जाते हो तो अभी कुछ कमी बची है। और वो क्या कह रही है, संसार का तो काम ही है तुमको दुख देना, है ना, और घूमता ही रहता है। अच्छा अभी आज रिश्तेदारों से बहुत प्रेम है, कल को लड़ाई हो जाएगी, फिर कल को लड़ाई होगी, फिर आप लोग बैठ के सब बातें करोगे, सुलझा लोगे, अच्छा तूने ये बोला था, मैंने ये बोला था, अच्छा चल छोड़, ये कर, आगे कर, थोड़े दिन सही चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये चलते ही रहना है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा सुधर जाए, है ना। बिजनेस आज अच्छा चल रहा है, कल को खराब होगा, सेहत आज अच्छी है, कल को खराब होगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार क्या है, संसार का मतलब ही चक्र है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना, तो ये तो सब चलता ही रहेगा एंडलेसली, और तुम इसी में अपने सुख दुख में घूमते ही रहोगे, कभी खुशी, कभी कभी खुश, कभी दुख, कभी लगेगा अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, मुझे तो हाईएस्ट नॉलेज हो गई, और फिर कुछ होगा तो लगेगा अरे मेरा तो सब गया खत्म, कुछ भी नहीं बच रहा, क्या हो रहा है। तो फिर अब ये कैसे निकलें इससे, कैसे इस चक्र से निकलें, इसीलिए शंकराचार्य फिर से उन्होंने वही बोला है, सिट इन सॉलिट्यूड विद अटमोस्ट डिस्पैशन, वैराग्य की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, वैराग्य, है ना, सेंसेस इन कंट्रोल, माइंड डिजायरलेस एंड वन पॉइंटेडली फोकस द इंटेलेक्ट ऑन द सेल्फ। तो ये पेज 147 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी लास्ट दो लाइन्स, इनको मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। और जब हम एकांत की बात करते हैं तो एकांत या जब मौन की बात करते हैं तो मौन सिर्फ ये नहीं है कि हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मन, हमारे विचार भी मौन होने चाहिए, है ना। सिट इन सॉलिट्यूड ये नहीं कि बस बाहर से आवाज़ नहीं हो रही, अंदर की भी तो कितनी आवाज़ें होती हैं, तो वो सब आना, फिर से वही आता है कि ये कैसे आएगा वैराग्य। तो जैसे जैसे हमारे कुछ, देखो जब तक क्या होता है, हम सिर्फ संसार को और संसार की वस्तुओं को और संसार के लोगों को ही जानते हैं और हमें यही पता होता है, तब तक ऑब्वियसली हमारी अटैचमेंट उन्हीं से होती है। वैराग्य क्या है, डिटैचमेंट ना, तो हम अभी उनसे अटैच्ड हैं क्योंकि हमें लगता है यही है, बस यही है। लेकिन जब हमें कुछ और नज़र आने लगता है तो हम उसको छोड़ पाते हैं। जैसे कि जब बच्चे होते हैं हम, तो हमें अपने गुड्डे गुड़िया और अपने टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम देखते हैं और हैं, तो वो अपने आप ही छूट जाते हैं, होता है कि नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें और चीज़, हमें पता लगता है कि और बहुत कुछ है जिसको मैं ये मान के बैठा हूँ, ये मेरा, ये सब कुछ, और ये सब कुछ छूटने वाला है। सब शायद उन्होंने आगे ही बताया इसमें कि रियलाइजिंग कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, कितना इम्परमनेंट है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कुछ भी कभी भी समाप्त हो रही है, और ये हम अपने अनुभव से जान ही रहे हैं, हर चीज़ खत्म हो रही है, कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचने वाला, ये हम खुद भी नहीं बचने वाले, जिसको हमने मैं माना है वो भी खत्म होने वाला है। तो जितना हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं ना, उतना हमारी डिटैचमेंट और बढ़ जाती है, अगर हम इसी के ऊपर मनन करते हैं कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज नहीं आज है वो कल भी नहीं रहेगा। तो किस चीज़ से अटैच होना है, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों पकड़ के बैठे। फिर उन्होंने बताया है कि वैसे तो तुम्हें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा सेल्फ को जानने के लिए, खुद को, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि को शुद्ध ना भी करो, अगर तुम ये सारी जो अभ्यास और क्रिया नहीं भी बताई जाए, ना कुछ भी ना करो, तो भी जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो हमेशा ही शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस करने से वो आत्मन शुद्ध हो जाएगा, नहीं, आत्मन हमेशा शुद्ध है। कमी कहाँ है, अशुद्धि कहाँ पे है, हमारे मन और बुद्धि में है अशुद्धि जो है ना। जैसे कि अगर एक हीरा कचरे में गिर भी जाए, मिट्टी कीचड़ में गिर भी जाए, तो बाहर से गंद लेकिन अशुद्ध नहीं होगा, है ना। क्या हीरा अशुद्ध हो जाएगा कीचड़ में गिरने से? बिल्कुल अशुद्ध नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा सेल्फ है, चाहे हमारा मन बुद्धि कितने भी अशुद्ध हों उसके आसपास, वो शुद्ध ही रहता है। हाँ, वो हमें प्रतीत होगा कि वो अशुद्ध है, हमें जैसे डायमंड लगेगा कि अरे गंदा हुआ हुआ है, लेकिन डायमंड को कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही सेल्फ को कभी कुछ नहीं होता, लेकिन बस सेल्फ का अनुभव करने के लिए वो जो हमारा मन और बुद्धि है वो शुद्ध होना चाहिए, तब वो जो सेल्फ है वो क्लियर वहाँ पे नज़र आता है, तभी वो नज़र आता। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारा एक सवाल आ सकता है कि अगर सेल्फ हमेशा प्योर है, वो सब कुछ जानता है, इफ़ सेल्फ नोज़ द सेल्फ, फिर मुझे अपने ये माइंड और इंटेलेक्ट, मुझे अपने ये मन और बुद्धि के ऊपर काम करने की क्या ज़रूरत है, है ना, क्यों करूँ, वो तो सेल्फ तो शुद्ध है ही है, है ना। ये सवाल आता है कि नहीं किसी का दिमाग में, अगर वो शुद्ध ही है तो इतना सब अभ्यास क्यों करना है, इतनी सारी क्रियाएं क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है करने की, कौन बताएगा, इसको आगे दिया ही हुआ है, फिर भी चलिए कोई बताओ क्यों करना है।
क्योंकि मन बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो वो सात्व स्वरूप को जानेगी ना, अगर वो शुद्ध ही नहीं है तो कैसे जानेगी। हाँ, वो तो फिर शरीर से को समझती रहेगी कि मैं ही हूँ सब कुछ, उसकी शुद्धता तो उस स्वरूप को समझने के लिए जरूरी।
जैसे वो चश्मे अगर पहने और वो गंदे हो तो उनको सब चीज गंदी दिखेगी, हालांकि सब चीज साफ होगी तो भी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने एक और चीज बताई है कि देखो अभी देखो, हमें एक फीलिंग होती है ना कि मैं हूँ, सबको है ना एक फीलिंग मैं हूँ, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, जैसे अभी हमें ये देखने के लिए सामने जो वीडियो देख रहे हैं, आँख चाहिए, अगर हम आँख ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अगर हमारे कान ना हो तो हम सुन नहीं पाएंगे अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो हमें जैसे देखने के लिए आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, ऐसे ही जो सेल्फ है, जो सेल्फ है वो तो है ही, लेकिन वो जो आई एम की फीलिंग है वो किस लिए है, क्योंकि जो माइंड इंटेलेक्ट है उनमें सेल्फ की इमेज आ रही है, वो आई एम भी इन दोनों के मतलब इन दोनों की शादी, जिसको उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, या फिर उन दोनों के समीप आने की वजह से है, करेक्ट, कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, कुछ भी नहीं और पता, चाहे आपकी और कोई भी इंद्री काम करे या ना करे, लेकिन मैं हूँ का सेंस है, वो किसकी वजह से है, वो सेल्फ की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, द एक्सप्रेशन ऑफ आई एम इज पॉसिबल ओनली थ्रू द यूनिट ऑफ माइंड इंटेलेक्ट, बट दिस एसोसिएशन ऑफ द रियल सेल्फ विद द माइंड इंटेलेक्ट दैट अलाउज द एक्सपीरियंस ऑफ आई एम क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब उसकी वजह से ही जान रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। जैसे कि सपोज रोशनी हो और काले बादल हो, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों मिलके बहुत एक फॉगी सी वो होता है ना, ना तो आपको रोशनी क्लियर नज़र आती है और बादल है तो फॉगीनेस हो जाती है। तो ऐसे ही जो सेल्फ की जो आय है, जब वो माइंड इंटेलेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है, और माइंड इंटेलेक्ट अगर शुद्ध नहीं है तो सब कुछ फॉगी हो जाता है। आप देखो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है, बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, एक कंफ्यूजन बड़ा कॉमन वो होता है हर चीज़ को लेके। वो कंफ्यूजन क्यों है, इसीलिए है कि सेल्फ की लाइट भी आ रही है लेकिन यहाँ पे जो मन बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हर चीज़ की कंफ्यूजन रहती है, हमें क्लैरिटी नहीं आती है ना, इसीलिए हमें वो डलनेस होती है। उस डलनेस को दूर करने के लिए हमें इस शुद्धि करने की ज़रूरत है। व्हेन रियल सेल्फ एंड माइंड इंटेलेक्ट कम near each other, it creates a problem, it shrouds the reality. Mind emerges from the darkness of ignorance. The self, on the other hand, is effulgent truth. So when darkness and light come in proximity, it leads to a kind of fogginess, haziness, dulling of the light. इवन व्हेन योर आईज आर फंक्शनिंग नॉर्मली यू कैन नॉट सी क्लियरली इन अ फॉग. लाइकवाइज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द फॉगी माइंड विद द सेल्फ एंड्स अप क्लाउडिंग द सेल्फ. तो हमारा जो मन है क्योंकि अशुद्ध है और जो सेल्फ की लाइट है वो क्लियर है, लेकिन वो दोनों मिल के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसकी वजह. अब वो कह रही हैं, देखो अगले पैराग्राफ में, हो सकता है तुम्हारा ये सुन के भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, है ना. इट माइट बी बिविल्डरिंग योर माइंड कि अभी ये क्या है, इसको कैसे समझें. तो कह रहे हैं तभी वेदांत जो है बड़ा लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक बार में हम इसको समझ जाएं, ये धीरे 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 चलता ही रहेगा. ठीक है, तो घबराना नहीं है. कहते हैं कि गुरु तो आपको एक बार में ज्ञान दे दे, एक मिनट में दे दे, है ना, लेकिन मन और बुद्धि शुद्ध होने चाहिए, है ना, तभी वो हो सकता. योर माइंड इज नॉट केपेबल, तुम्हारा जो मन है अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है. वो कहते हैं कि शायद तुम्हें बुरा भी लगे यू सुन के, इट मे साउंड हार्श, बट द फैक्ट इज दैट द स्मॉग ऑफ डार्कनेस इज टू डार्क. बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वहाँ पे अशुद्धि होगी उतना ही इस चीज़ को समझने में और मुश्किल आएगी. और ये क्यों अशुद्धि है? काउंटलेस डिज़ायर्स, इन्यूमरेबल अटैचमेंट्स, अवर्जन्स, हेट्रेड, एंगर, जेलसी, लस्ट, सच फिल्थ हैज़ मेड द स्मॉग ऑफ डार्कनेस पिच ब्लैक. हाउ कैन सच एन ओवरकास्ट माइंड सी थिंग्स क्लियरली. है ना, मन के अंदर कितनी सारी डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, गुस्सा, ईर्ष्या, मोह, ममता, सब कुछ भरा पड़ा है. अब उस वाले वो मन जो है तो कैसे उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन लाइट नज़र आएगी, पूरा डार्कनेस है वहाँ पे. तो फिर बात आ जाती है वही कि साधक के गुण की बात आ जाती है ना, कि क्या मेरे अंदर वो गुण है, क्या मैं वो कार्य कर रहा हूँ इनसे मुक्त होने का, इनसे शुद्ध होने का, ताकि वो जो आत्मा की रोशनी है वो मेरे अंदर नजर आए, इस मन बुद्धि में रिफ्लेक्ट हो जाए. फिर उन्होंने बताया है कि सबसे डिफिकल्ट, जो सबसे डार्केस्ट ऑब्फस्केशन इज द अजम्पशन दैट यू आर द बॉडी. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मान के सबसे बड़ा. तो फिर उन्होंने बोला है कि सपोज बाय मैजिक अगर तुम्हारे पुराने जन्मों के सारे शरीरों को ले आया जाए, है ना, तुम्हारे तुमने जितने शरीर लिए हैं, फिर तुमको कुछ अटैचमेंट रहेगा जब इतने सारे देख पाओगे, जब इतने सारे दिखेंगे, ना तो तुम्हें इस शरीर से अटैचमेंट रहेगी, ना इस शरीर के रिश्तों से, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, वो सब जब तुम देखोगे इतने सारे हैं तो अब किसको करें, है ना. वही तो बात है ना, अभी जब हम लिमिटेड इतने से में देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं बहुत कुछ है, लेकिन जब इतना बड़ा नज़र आता है तो लगता है तो कुछ भी नहीं है, है ना. तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और ऐसा शायद मैंने भी सुना हुआ है, आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा, कहते हैं कि जिन्होंने आपके कर्जे लिए होते हैं ना पिछले जन्मों में, वो आपके बच्चे बन के पैदा होते हैं. तो आपके जो बच्चे हैं वो सारे वो हैं जिनके आपने कर्जे पूरे करने हैं. क्योंकि क्या होता है, देखो कर्जे का मतलब, आप वैसे तो किसी के आपने जो भी देना है आप नहीं दोगे, आपको वो पसंद नहीं है या परेशानी है, लेकिन वही जब बच्चा बन के आ जाता है तो चाहे वो बच्चा आपकी इज्जत करे या ना करे, आपको प्यार करे या ना करे, आप सब कुछ उसको दे देते हो, आपको पसंद हो या ना हो, है कि नहीं, सब कुछ देते हो और करते हो. तो यही चक्कर चलता रहता है. फिर वो कहते हैं कि इनडीड वन शुड बी वेरी ऑफ वंस कर्मास, यू मे फॉरगेट योर प्रीवियस मिसडीड्स बट टाइम नेवर फॉरगेट्स. Time is like a CCTV camera that records all your actions, all your thoughts 24/7. है ना, एक जो है वो हमारा सब कुछ, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज़. और आप लोगों ने सुना होगा अभी लेटली, मैंने ना काफ़ी लोगों के ऐसे अनुभव पढ़े, आपने सुना है ये जो होता है ना लाइफ रिव्यू, आपकी डेथ के बाद होता है. ऐसा बोलते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु, जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद जो कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उन्होंने शेयर किया है इसके बारे में, तो फिर जब वो जाते हैं मतलब एस्ट्रल बॉडी में चले जाते हो, तो आप अपनी पूरी लाइफ जो आपकी पुरानी होती है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो, शुरू से लेके एंड तक सब कुछ. और वो बहुत फास्ट मूव करता है. अब हम सोचेंगे अच्छा अगर मुझे अपनी लाइफ का ये देखना है तो सपोज अगर मैंने 75 साल जिए तो 75 साल उसमें बीत जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता. वो टाइम का जो है ना, टाइम डिफरेंस बहुत अलग होता है, लेकिन आप उसमें सब कुछ अपना देख पाते हो. और उसमें आप ये देख पाते हो कि आपने कौन कौन से डिसीजंस कैसे लिए, क्या किया, आपने जो किया था अच्छा किया, उससे दूसरों का फायदा हुआ, या आपने कुछ किया था उससे दूसरों का नुकसान हुआ, या आपने किसी को हर्ट किया था, हर चीज आपको अपनी, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, और सब कुछ आप देख के और उसमें से फिर आप वहाँ पे डिसाइड करते हो कि अब आपको क्या सीखना है, अगर आगे का वो बचा होता है कुछ जो भी है, कि अच्छा आपने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं किया, क्या करना था नहीं करना, कि हम फिर से नेक्स्ट जन्म हमारा कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि क्या करेंगे। और कहते हैं स्पेशली अगर सपोज आपने कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरे को हर्ट हुआ हो, ओके, किसी दूसरे को, तो दूसरे को जो हर्ट हुआ होता है उस समय आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस करते हो, आपको वो फील होता है वहाँ पे। और एक क्या होता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना, वो जैसे सपोज हम अभी भी कुछ हर्ट फील होते हैं तो जैसे रोना आ जाता है, या हमारी बॉडी शेक करने लगती है, या कुछ लोग एंग्शियस हो जाते हैं ना, जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो हमारी बॉडी एक तरह से बफर होती है जो उस चीज़ को फिर भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब हम एस्ट्रल में होते हैं तो हमारे पास बॉडी नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर कुछ अच्छा होता है तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर कुछ गलत किया होता है तो उसका दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, योर गुड डीड्स, योर मिस डीड्स, योर गुड थॉट्स, योर विकेड थॉट्स, योर अटैचमेंट्स, योर अवर्जन्स, नथिंग एस्केप्स इट्स लेंस। एंड रिमेंबर, फिजिकल बॉडीज चेंज बट द माइंड इज द सेम इन ऑल लाइफ टाइम्स। वॉट दिस मीन्स इज दैट ऑल योर प्रीवियस थॉट्स एंड डीड्स आर प्रेजेंट इन द डीपर लेयर्स ऑफ योर ओन माइंड, है ना। तो शरीर, जैसे हमें पता है शरीर तो बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, 80-85-100 साल मैक्सिमम, लेकिन जो मन है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो वही चलता है, सेम चलता है। तो जो भी हमारे विचार और थॉट्स होते हैं या जो हमारी भावनाएं हैं वो वही चलती हैं। तो ऐसा नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो कर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बोला या आपने किसी को एक्शन लिया उसी से आपने अपना वो कर्म को करा। आप जो सोचते हो, आपकी जो भावना होती है, वहाँ पर भी कर्म हो रहा है ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर जा रहा है, वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो इनफैक्ट हम बोलते हैं उसके लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो हमको पता भी नहीं है, अनकॉन्शियसली इकट्ठा हो रहा है सारा हमारी सोच। तो जितने भी हमारे कर्मों के जो बीज हैं वो हमारे चित्त में ही हैं, और धीरे धीरे उनके फल हमारे ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, है ना। तो वो क्या कहती हैं, नेवर ब्लेम एनीवन फॉर योर सॉरोज और लॉसेस, इट इज़ योर ओन बैड कर्मा फ्रूट। जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम खुद ही हैं उसके लिए। गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, गुड फ्रेंड्स एंड सो ऑन आर फ्रूट्स ऑफ योर ओन नोबल कर्मा। Moreover, if your karmas are not virtuous, you will not reach an enlightened master. And even if you get a guru, he will be a charlatan. तो जैसे कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि अरे हमारे तो गुरु ढोंगी मिल गए, हम तो फंस गए, या बहुत सारे लोगों का सुना ही है, और हम कितने बार सुनते रहते हैं, कोई ना कोई गुरु का एक्सपोज होता रहता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको गुरु सही, पहली बात तो अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, नोबल डीड्स नहीं है, तो तुमको कभी सही गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, जो ढोंगी होगा, तो तुमको ढोंगी गुरु ही पसंद आएगा, तुम उसी के चक्कर में फंसोगे। यू विल एंड अप वर्शिपिंग द चीट हु विल कीप ऑन स्विंडलिंग यू। इसमें भी हम बोलेंगे कि अरे उसने हमें धोखा दिया, नहीं उसने नहीं दिया, हमारे कर्म ही ऐसे थे। इनफैक्ट एक बार मैंने पहले भी बताया था, एक बार ओशो का वीडियो था, तो वो बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारा जैसे हम इस फैमिली में आए, हमारा जन्म हुआ इस फैमिली में, तो लेट अस से किसी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है, किसी फैमिली में कोई लेट से कैंसर का होता है, किसी फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम होती है ना, कई बार साइकोलॉजिकल डिजीजेज होते हैं, तो वो बोलते हैं अरे हमने क्या वो किया था, ऐसी फैमिली में आए इसकी वजह से हमें ये परेशानी हो रही है। तो कह रहे वो आप फैमिली में अट्रैक्ट कैसे होते हो, क्यों आपने उस पर्टिकुलर फैमिली में ही जन्म लिया, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोज आपको यहाँ पे डायबिटीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका वो था ऑलरेडी, तभी आप ऐसी फैमिली में आए कि आपका ये कंटिन्यू हो रहा है, या आपको कैंसर हुआ, या आपको मेंटल इलनेस हुई, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, तो जेनेटिक जीन्स में है, तो वो जीन्स में आपका उस फैमिली में जन्म लेना ही इस बात का ये है एग्जाम्पल है या उसका रीजन है कि यू ऑलरेडी हैव इट इन यू. वो आपके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं उसके पहले से ही बीज मौजूद थे, तभी वो वहाँ पे पहुँचा. और अगर कुछ अच्छा हुआ है आपकी फैमिली की वजह से तो वो भी उसी की वजह से है. वर्चुअस कर्माज ऑन द अदर हैंड विल लीड यू टू द राइट मास्टर. Not only this, a learned astrologer can also state which path a disciple will choose, devotion, yoga or Vedant. तो ये अभी एस्ट्रोलॉजी का बता रही थी ना कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये जान सकते हैं. तो आप कौन सा मार्ग लेंगे, कौन सा मार्ग आपके लिए सही होगा, वो भी जो है एक सही एस्ट्रोलॉजर जो है वो बता सकता है. कैसे बताएगा कि ऑलरेडी उसकी चीज़ें आपके अंदर होंगी, है ना. वो क्या कर रहा है, वो आपके सॉफ्टवेयर को वो ही पढ़ पा रहा है ना, तो उसको पता रहता है कि आपने पहले इसमें साधना की होगी. अब जैसे मैं सोचती हूँ कि जब मैंने वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और मुझे हुआ मैं यहाँ पे क्रिया योग, मैं तो पहली बार क्रिया योग का नाम सुना था, है ना, पढ़ा था, तो मुझे कैसे इतना तेज हो गया कि मैं यहाँ पे क्रिया योग करने ही आई हूँ. तो पहले होगा ना कोई बीज. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सडनली किसी चीज़ को देखते आ जाए कि मैं यही करने आई हूँ, इतना क्लैरिटी से आए, है ना. तो वो बीज पहले से ही है. Reverting to the point I was making, the feeling of I am is because of the association of the mind intellect with the real self. And just as the self is without a beginning, so is its reflection. Jiva is as beginningless as the Atman. अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमने बोला कि आत्मन हमेशा था, है और रहेगा, ना उसका आदि है ना अंत है, है ना, अनंत है. बिल्कुल ऐसे ही जो जीव है, जो चिदाभास है, उसका भी कोई आदि और अंत नहीं है, वो भी हमेशा था, है और रहेगा. ओके, सेम है दोनों चीजें. नाउ इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट द बॉडी बिकॉज द बॉडी इज टैंजिबल, इट इज ग्रॉस. टू सम एक्सटेंट यू कैन ऑल्सो रिलेट टू द फैक्ट दैट यू आर नॉट द सेंसेस, बट वेन इट कम्स टू द माइंड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. है ना, ये तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि शरीर से अलग होना आसान है लेकिन मन से अलग होना, अपने आप को अलग जानना, ये सबसे मुश्किल काम है. क्यों है? क्योंकि हजारों लाखों थॉट्स चले ही जा रही हैं दिमाग में, हर समय चलती रहती हैं. अगर हम कभी ध्यान दें, या अगर हम किसी दिन ना, वैसे एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बैठ जाओ, जो जो विचार आता जा रहा ना लिखते जाओ. आपका हाथ लिख भी नहीं पाएगा, पर ट्राई करना कभी. शुरू शुरू में जब हम मौन करते हैं ना तो बिल्कुल यही होता है, और हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, तो हम इतना घबरा जाते हैं क्योंकि इतनी बुरी तरह से अटैक होता है हमारी थॉट्स का हमारे ऊपर, अभी तक तो हमने रियलाइज ही नहीं किया होता. तो हम दूसरी चीज़ें, फिर हम सोचते हैं चलो छोड़ो ये सब, फिर वही काम करने लग जाओ, बुक पढ़ने लग जाओ, टीवी देखने लग जाओ, फ़ोन कर लो किसी को, हम उसमें घुस जाते हैं. लेकिन वो प्रोसेस करना बड़ा ज़रूरी है टू बी एबल टू डील विद दोज थॉट्स. यहाँ पे भी उन्होंने देखो ये कहा है कि हजारों थॉट्स चल रही हैं तुम्हारे माइंड में, लेकिन तुम कभी ये नहीं बोलते हो कि ये मेरा माइंड सोच रहा है ना. तुम क्या बोलते हो? मैं सोच रहा हूँ. ये तो हम प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे हैं. दिस मीन्स यू आर इक्वेटिंग द माइंड विद द सेल्फ. यू नेवर से माई इंटेलेक्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, यू असर्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आया, ये नहीं बोलते बुद्धि को समझ में नहीं आया. तो एसेंशियली यू लिव एज द माइंड, यू लिव एज द इंटेलेक्ट. यही हो रहा है ना हमारे साथ. मैं अपने आप को ये मन मान के बैठा हूँ, मैं अपने आप को ये बुद्धि मान के बैठा हूँ. यही तो है, यहीं पे पूरा का पूरा जो बुक है हमारी आत्मबोध की, वो उसी के ऊपर तो अटैक कर रही है. Hence, you find it difficult to comprehend what it means to not be the mind intellect, है ना. शरीर को तो फिर भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इस मन बुद्धि से अलग होके कैसे देखें, कैसे जानूं मैं अपने आप को, ये है सबसे बड़ा सवाल, और वही है सबसे बड़ा जवाब भी. तो फिर उन्होंने बोला है एक और तरीका. पहले तो उन्होंने बता दिया था शंकराचार्य जी ने, है ना, कि एकांत में वैराग्य के साथ अपनी सब इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठो सेल्फ पे, पहले तो उन्होंने ये बताया था. अभी ये ज़्यादा ईजियर तरीका है जो हम कर रहे हैं. तो वो क्या कह रही हैं, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एड्रेस योर बॉडी इन द थर्ड पर्सन, विच वी हैव ऑलरेडी डन दैट. आई डोंट नो अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन करते रहना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है. तो जब भी भूख लगे, ये बोलने की बजाय कि मुझे भूख लगी है, बोलो शरीर को भूख लगी है, इसको कुछ खाना दे दो, है ना. वर्बलाइज दीज स्टेटमेंट्स अलाउड डू दिस फॉर 3 to 6 months. देखो 3 से 6 महीने लगातार करना होगा ये. The body needs food. The body is tired. The body is going to office. The body is sitting in the garden. Replace the I with the body. And replace my mind with the body's. Thus my mother becomes this body's mother. And so on and so forth. Essentially talk without using I, my, mine. This is the challenging practice. ये 3 से 6 हमने भी शायद थोड़े दिन किया होगा है ना, फिर छोड़ दिया होगा, भूल गए होंगे.
Our names Monica, हमने नाम लेके किया था. Like you know Swati Zangri, Swati Wonki.
वो भी ठीक है, वो भी एक ही बात है, क्योंकि Swati कौन है? Body का ही नाम है ना Swati.
हाँ,
बिल्कुल.
We did that.
हाँ, तो इसको उन्होंने बोला है 3 से 6 महीने लगातार बिना तोड़े करना है, तब कुछ उसका इफेक्ट नजर आएगा. तो फिर वो कहते हैं You don't have to make it an artificial distance between you and the body. It already exists. है ना? अभी हमें लग रहा है कि artificial है, पर ये already distance है. फिर बड़ा अच्छा example दिया, जैसे आपने हाथ में napkin लो, वो कहती है अगर मैं हाथ पे अगर अपने napkin को रगड़ूं, तो जो napkin पे light आई है, क्या वो भी हिल रही है जब napkin हिल रहा है? सोचने वाली बात है ना, जो light. नैपकिन अलग है, लाइट अलग है ना, वो ऑलरेडी अलग है, वो एक नहीं है. कि अगर हम नैपकिन को हिला रहे हैं तो क्या लाइट, या मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिल रही हूँ तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है क्या वो भी हिल रही है? तो ये समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये बताया है. लाइट इज देयर विद द नैपकिन बट सेपरेट फ्रॉम इट. डोंट वी अंडरस्टैंड? अभी मेरे हाथ पे जो लाइट पड़ रही है ये हाथ पर है भी, लेकिन हाथ से अलग है ना. सिमिलरली I am with the body, I am with the mind, I am with the intellect, but I am distinct from all of them. इन सब के साथ होते हुए भी अलग है. ये तो हम कितना अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया. अभी आप अपने हर जगह देख सकते हो, लाइट हर जगह पड़ रही है. हम जो भी देख पा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे लाइट है ना. जो आपका फ़ोन होगा जिसपे आप देख रहे हो, जो आपके अभी ये हमें नज़र आ रही है एक दूसरे की फ़ोटो, वो भी लाइट की वजह से नज़र आ रही है. तो लाइट एक साथ है भी इनके, लेकिन अलग भी है ना सबसे. बिल्कुल ऐसे ही सेल्फ इस मन बुद्धि शरीर के साथ होते हुए भी उससे अलग ही है. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू हियर दिस, आई वांट टू सी दैट, से द इयर्स एंड माइंड वांट टू हियर दिस, द आईज एंड द माइंड वांट टू सी दैट. इफ द माइंड इज अनहैप्पी से सो, डोंट से आई एम अनहैप्पी. If the mind feels jealous, say openly to the concerned individual, this mind has a feeling of jealousy for you. The truth is that the day you can openly say so, the feeling of jealousy will automatically vanish. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अब ये व्यवहार उसमें आ गए हैं कि जो भी आपको हो, फीलिंग हो रही है किसी के प्रति, गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति, जेलेसी है, या जो भी कुछ मन में आ रहा है, उसको ओपनली बोल दो, उसको अंदर मत रखो. ऐसा नहीं कि बाहर से दिखा रहे हो सब बड़ा अच्छा है, हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, और अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो. वो बोलते हैं वो हिपोक्रेसी है, और उससे क्या होगा, तुम्हारे मन का जो कचरा है वो और भरेगा, जो हमारे मन के अंदर फॉगीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी. तो उसको बोल दो, और ये मत बोलो मेरे को हो रहा है ना, ये मन, इसको ये परेशानी हो रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी. हाँ रेनू बोलो.
बच्चे ऐसा करते हैं.
हाँ.
आपने नोटिस किया होगा बच्चे अक्सर आके बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझे ना आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है.
हाँ.
वो बोल देते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप मुझे ऐसा कह रही हो, डायरेक्ट बोलते हैं. वो मतलब घुमाते फिराते नहीं है. But I have noticed this with my daughter, तो वो इसलिए मैं उस हिसाब से बता रही.
नहीं बिल्कुल, उन्होंने आगे दिया भी है, एंड बी इनोसेंट लाइक नाइव चिल्ड्रन. देखो लास्ट वाले में एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे ऐसा ही करते हैं. बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, तो जैसे बच्चा करते हैं. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी तो ईगो आ जाती है ना, फिर हम कह नहीं पाते वो सब चीज़ें. तो वो कह रहे हैं बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स, ऑलवेज बेयरिंग इन माइंड दैट इट इज़ नाइदर गुड टू फॉर्म अटैचमेंट्स नॉर टू हार्बर हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन. दोनों ही चीज़ें सही नहीं है, है ना, ना अटैचमेंट ना हेट्रेड. इट डैमेजेस योर ओन माइंड. Perpetual moaning, perpetual complaining, stop being such a grouch. और फिर वो क्या कहते हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा ये चीजें होंगी उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड फॉगी होगा, उतना ही तुम्हें कम वेदांत समझ में आएगा, उतना ही कम जो सेल्फ है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो पाएगा, है ना। बात 10 बात की एक बात तो यही है घूम फिर के मेन, तो कि वो नहीं हो पाएगा।